रेडियो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
अर्पा कम्युनिटी रेडियो और वेब रेडियो का कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता आज आपके बीच फिर मैं लेकर के आया हूँ। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। और ये कार्यक्रम हमारा लगातार कई हफ्तों से चल रहा है और इस कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ श्रोताओं से बात होती है बल्कि बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। एक तरह की जागरूकता का कार्यक्रम आज की तारीख में ये बन चुका है। और कार्यक्रम के दौरान इस संवाद के लिए उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया और उन श्रोताओं का भी जो लगातार हमें सुनते रहे हैं। तो आज की बातचीत में हमारे साथ हैं प्रमोद कुमार साहू, जांजगीर जिले के बोलसरा नैला से। प्रमोद कुमार जी, स्वागत है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में।
जी सर, जी सर नमस्कार। और सभी अर्पा रेडियो सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को प्रमोद कुमार साहू का प्यार भरा नमस्कार सर।
जी जी, आपका स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे प्रमोद कुमार जी, रेडियो से, कम्युनिटी रेडियो से और वेब रेडियो से, मतलब रेडियो ने अपना सफर एक बड़े बक्से से लेकर जेब में आ सकने वाले मोबाइल तक का पूरा किया है, इस दौरान आपका जुड़ाव किस तरह से रेडियो से है?
जी सर, मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूंगा सर, सर्वप्रथम मैं अर्पा रेडियो को उनके दूसरे स्थापना दिवस पर बधाई देना चाहूंगा।
जी
सर, और बताना चाहूंगा सर, रेडियो से जुड़ाव मेरा बचपन से रहा है। और पिताजी, मुझे याद है वो दौर सर जब चुनाव हुआ करता था, उसकी कमेंट्री जो है रेडियो के माध्यम से आया करता था। तो सर मेरे पिताजी सर काफी रात तक जाग कर जो वोटों की जो काउंटिंग होती थी सर, तो वो उनको सुना करते थे। तो उसी से मेरा रेडियो के प्रति हुआ। और वैसे देखा जाए सर तो मैं 1990-91 से नियमित रूप से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ सर।
जी जी, फिर आकाशवाणी के बाद धीरे से तमाम साधन उपलब्ध हुए हैं, कम्युनिटी रेडियो की, वेब रेडियो की, मोबाइल तक पहुंचा, ये सफर आपके साथ कैसा था?
सर यदि कम्युनिटी रेडियो की बात की जाए सर, तो विशेष रूप से मुझे अर्पा रेडियो से जुड़ा हुआ सर। जब अर्पा रेडियो का कार्यक्रम सुना, बहुत ही अच्छा लगा सर। इसमें स्थानीय प्रतिभाओं को जो स्थान दिया जाता रहा है सर, वो बहुत ही अच्छा लगा है। साथ ही साथ हमारे आकाशवाणी से बिलासपुर से मेरा काफी समय से विशेष लगाव रहा है सर। तो और वहाँ के कंपेयरों के माध्यम से सब कार्यक्रम जो सुनता रहा हूँ सर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ये, और इसीलिए रेडियो सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा।
अच्छा, रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम आप ज्यादा सुनना पसंद करते हैं?
वैसे सर मैं रेडियो पे फिल्म संगीत जो फरमाइशी कार्यक्रम रहता है सर, उसको विशेष रूप से सुनता हूँ सर। और मेरी रुचि पत्र लिखने में ज्यादा रहा है, तो मैं आज भी कर नियमित रूप से विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों को मैं नियमित रूप से पत्र लिखता हूँ सर।
और अर्पा रेडियो को मेल करते हैं?
हाँ सर, अर्पा रेडियो तो अभी नए नए हैं सर, लेकिन नियमित रूप से उसके जो नियमित कार्यक्रम जो आते हैं सर, वो हम जरूर सुनते हैं। और विशेष अगर अर्पा रेडियो की बात की जाए सर, तो इसमें अपन छत्तीसगढ़ के जो कार्यक्रम आता है सर, वो मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें स्थानीय श्रोताओं को, स्थानीय कलाकारों को जो स्थान दिया जाता है सर, तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और हम श्रोताओं के लिए तो विशेष रूप से कार्यक्रम हमारे अनीश के संग नितानंद के पसंद जो कार्यक्रम है, इसका गीत पर आधारित जो कार्यक्रम होती है सर, वो नियमित रूप से हम सुनते हैं, भाग लेते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है सर।
जी जरूर, अर्पा रेडियो की जो हमारे निदेशक है, उनके माध्यम से प्रयास है कि तमाम प्रस्तोता श्रोताओं से जुड़े और सुनने वालों से, कलाकारों से, लिखने पढ़ने वालों से जुड़े कार्यक्रम करते रहे। और ये हमारी कोशिश भी है, जैसा कि आपने कहा कि फिल्म संगीत में भी आपकी रुचि है, तो बताइए आज इस पहले पड़ाव में अर्पा रेडियो से, इस कार्यक्रम से कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
मैं चाहूंगा सर किशोर कुमार का गाया हुआ मिस्टर इंडिया फिल्म का एक गीत है सर, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ये गीत है सर।
जी सुनिए। जबरदस्त गीत का जिंदगी की यही गीत है और इस जिंदगी चलायमान है और हमें चलते रहना है। अर्पण रेडियो की तमाम कोशिशों के बाद, तमाम उतार चढ़ाव के बाद इतने सारे श्रोताओं के साथ अपना संपर्क बनाया है, सुनने वाले जुटाए हैं। अर्पण रेडियो के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो संसार रचा गया है वो सब आपका है। तो बताइए प्रमोद कुमार जी से, और आज के कार्यक्रम में प्रमोद कुमार साहू जी से हमारी बातचीत चल रही है। साहू जी, आप बोरसरा नैला से हैं, तो वहाँ के बारे में बताइए कि बोरसरा नैला कैसा है, क्या खासियत है?
जी सर, मैं बताना चाहूँगा सर, हमारा गांव जो है बोरसरा जो है नैला से करीब है सर। नैला एक रेलवे स्टेशन है जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से जुड़ा हुआ है और सर वहाँ से 10 किलोमीटर मेरा एक छोटा सा गांव है सर। हालांकि इस गांव के अपनी एक ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत होने के साथ साथ सर यहाँ जो है विशेष रूप से पर्यावरण को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है सर। और क्योंकि मुझे सर सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि है तो जी सर यहाँ मैं एक युवा समिति के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ और विशेष रूप से सर हम लोग पर्यावरण के लिए जो है वृक्षारोपण का कार्य जो है हम लोग करते हैं सर। तो हमारे गांव के जैसी ही शुरुआत होती है सर, तो आपको हरे भरे पेड़ पौधे से आपसे मिला हुआ मिल जाएगा सर। और ये जो है सर स्कूल वगैरह के जाते तक या जितने भी खाली जगह है सर, जो नहर के किनारे है सर, वहाँ जो है हम लोगों ने विशेष तौर पर ये बहुत सारे पौधे जो है लगाते हैं सर। मैं बताना चाहूँगा सर, हमारे गांव में जो है सर सभी तरह के लोग रहते हैं सर, आपसी भाईचारा से भरा हुआ है सर। और जो भी तीज त्योहार जो है मनाए जाते हैं सर, ये बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है सर। मैं विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा सर, क्योंकि हमारे गाँव में सर होली का जो त्योहार होती है सर, वो हमारे यहाँ जो है सर इस तरह से मनाया जाता है ताकि हरे पेड़ पौधों को ना काटा जाए और एक तरह से स्वच्छता का संदेश देते हुए जो कूड़े करकट या कहीं भी ऐसे चीजें दिखती हैं सर जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है सर, उसको जो है हम लोग होली के रूप में उसका उपयोग करते हैं सर।
वाह, बहुत सुंदर बात कही आपने। आप सामाजिक भागीदारी के साथ हैं, पर्यावरण के कार्यकर्ता के रूप में है और आपकी भाईचारे की जो बात कही है गांव में, वाकई जिस गांव में हरियाली हो, आपकी भाईचारा हो, तीज त्योहारों में समानता हो, उस गांव के क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया कि सामाजिक रूप से आप काम कर रहे हैं और आपकी समिति का भी आभार हम प्रकट करते हैं कि वे इस काम में लगे हुए हैं। एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने वृक्षारोपण और पर्यावरण की बात कही, तो आप अपने समिति के माध्यम से जो वृक्ष रोपते हैं वो किस किस तरह के वृक्ष होते हैं?
सर मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा सर, हमारी जो युवा समिति बनी हुई है सर, उसमें गांव के जो युवा वर्ग है वो तो भाग लेते ही हैं सर, साथ ही साथ गांव से जो बाहर रहते हैं सर, चाहे वो नौकरी पेशा हो या जो भी जिस रूप में भी है सर, वो हम लोगों में एक ऐसा ये चलन है सर कि हम लोग प्रतिदिन एक रुपए बचाते हैं। इस तरह से जितने भी हम लोग का सदस्य हैं वो सब एक रुपए की दर से मतलब अपना बचत करते हैं और साल के अंत में जैसे कि 31 मार्च वगैरह होता है सर, उसमें जो है कम से कम 365 रुपए जो है अपना योगदान देते हैं सर। और इस योगदान का जो रहता है सर, उसमें अब जो हमने बताया सर कि जैसे कि पौधे रोपण का कार्य करते हैं, साथ ही साथ ऐसे कार्यक्रम जैसे स्कूल में जो गांव में पुस्तकालय वगैरह का निर्माण करना हो तो वो हम लोग इसके माध्यम से करते हैं सर। और गरीब तबके के लोग जो उच्च शिक्षा के लिए ना जा पाते हैं सर, उनको यथासंभव यदि उनकी तरफ से आता है सर हमारे पास, तो हम लोग उनको सहायता जरूर करते हैं सर, ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई जो है कर सके सर।
क्या बात है, कितनी जरूरी बात आप कह गए कि कई बार हमें अपनी नौकरी पेशा और तमाम चीजों के लिए गांव और घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो जुड़ाव एक रुपए प्रतिदिन के रूप में और गांव में रहने वालों का भी जुड़ाव गांव से सिर्फ एक रुपए प्रतिदिन के रूप से और 365 का आंकड़ा वाकई ये बताता है कि साल भर आप गांव की चिंता करते हैं, अपने आसपास पर्यावरण की चिंता करते हैं, शिक्षा के माध्यम से अपने आसपास के लोगों की चिंता करते हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात है। और इसी मुहूर्त पर एक गीत और सुनना चाहेंगे आपसे?
मैं चाहूँगा सर एक गीत है किशोर कुमार की आवाज में, मजबूर फिल्म का है सर, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करता है सर।
आदमी जो कहता है वाह सीधे तुमने।
कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूँ। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो झपके यहाँ मौसम बदल जाए। प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है।
नीचे आदमी को जोड़ने वाली बात से ठीक की फरमाइश आई। बोरसरा नैला में ये प्रयास चल रहा है कि गांव के तमाम आदमी एक दूसरे की मदद के लिए एक रुपया रोज वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो करें और एक बड़ा समाज, विस्तृत समाज, विवेकशील समाज बना पाए। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इस प्रकल्प के लिए। प्रबोध कुमार जी,
जी सर,
बताइए कि क्या करते हैं आप?
सर मैं श्रम विभाग की डिस्पेंसरी में कार्यरत हूँ सर, जो कर्मचारी राज्य बीमा के नाम से जानी जाती है सर।
अच्छा।
और इसमें मैं सर 2013 से इसमें मेरा लगा हुआ है सर, मैं नौकरी देता हूँ।
अच्छा, आपने जैसा कहा कि श्रम विभाग की डिस्पेंसरी में, तो हम अमूमन जो लोग हैं वो जानते हैं कि श्रम विभाग एक अलग तरह का काम है और डिस्पेंसरी जो शायद स्वास्थ्य से जुड़ता हुआ शब्द सुनाई देता है, तो श्रम विभाग और स्वास्थ्य इसका ये मेल किस तरह का है?
हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा सर, ये जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत आता है सर, और ये हमारे अपने राज्य छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग इसको संचालित करता है सर। ये एक तरह से सर सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा को ध्यान में रखकर जो है ऐसे कर्मचारी सर जो प्लांट में कार्यरत रहते हैं, जो स्कूल में कार्यरत रहते हैं, या यू कहें सर जहाँ 10 से अधिक कर्मचारी रहते हैं सर, यदि वो चाहें सर तो इस कर्मचारी राज्य बीमा से जुड़ कर सर वो अपनी सामाजिक सुरक्षा और अपने अंतर कार्य करने वाले जो कर्मचारी रहते हैं सर उनको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा देना दे सकते हैं सर। मैं बताना चाहूँगा सर, इसके अंतर्गत ऐसे कर्मचारी आते हैं सर जो जिनकी प्रति माह वेतन लगभग 21,000 से कम हो सर, और वो प्लांट में कार्यरत हो जहाँ औद्योगिक क्षेत्र रहते हैं सर, ऐसे क्षेत्रों में जो कार्यरत रहते हैं जो कर्मचारी, उनके खुद के उनके परिवार के लोगों को सर ये सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा जो है उपलब्ध कराई जाती है सर, जिसके अंतर्गत सर कर्मचारी राज्य बीमा में सर ऐसे कर्मचारी जो जिनका योगदान इस तरह रहता है सर, उनके वेतन का 0.75% जो है कर्मचारी अदा करते हैं सर, और उनको जो रोजगार देते हैं सर चाहे औद्योगिक क्षेत्र के में रूप में हो सर या स्कूल वगैरह के रूप में हो सर, तो ऐसे हुए रोजगार प्रदाता का योगदान सर 3.25% होता है सर। जी सर, और उनको जो है सर स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ उनके सामाजिक दायित्वों को सर ये राज्य बीमा निगम जो है पूर्ति करती है सर।
अच्छा, मतलब स्वास्थ्य के संदर्भ में एक आर्थिक पहल है इन तमाम श्रम से जुड़े लोगों के साथ। तो आपने जैसे कहा कि कम से कम 10 लोग हो।
हाँ सर, 10 से 15 लोग ऐसे संगठन हो सर, यदि वो प्राइवेट स्कूल भी है सर तो वहाँ से यदि स्कूल संचालक यदि वो चाहे सर तो वो अपना जो है उनको वेतन तो देते ही है सर, तो उनको एक तरह से स्वास्थ्य सेवा, क्योंकि आज के समय में स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है सर, तो ऐसे यदि वो चाहे अपने कर्मचारी को अपने यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी जो होते हैं उनको, तो उसको श्रम विभाग के माध्यम से पंजीयन किया जाता है सर, और उनको जो है उन्हें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, करते बस उनके वेतन का जो योगदान होता है उसमें से बताया ना सर 0.75% वो खुद देते हैं जो कर्मचारी रहते हैं, और जो उसको रोजगार प्रदान करते हैं सर वो 3.25% के रूप में उसकी राशि जो होती है जितनी भी वेतन वो पाते हैं वो उसके अंतर्गत जो है सर उसको इसकी सेवा का लाभ जो है दिया जाता है।
ये तो बात हुई जुड़ने की और किस तरह का लाभ उसमें मिलता है। यदि कोई व्यक्ति या 10-15 लोग या कोई नियोक्ता या संचालक यदि इस श्रम विभाग की इस योजना से जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया जरूरी है?
सबसे महत्वपूर्ण है सर एक संगठन का रूप होना, और उस संगठन को चलाने वाला होना चाहिए सर, यदि स्व सहायता समूह के माध्यम से भी यदि चाहते हैं सर, तो चूंकि इसमें भी 10 से 15 से अधिक लोग उसमें रहते हैं
जी,
तो वो भी कर सकते हैं सर, बशर्ते उसको पूर्ति के लिए सर जो 2 मुख्य क्राइटेरिया जो मैं बताया सर वो होना जरूरी है, और इसके लिए तो हर जिला में श्रम विभाग का एक अपना ऑफिस रहता है सर, श्रम विभाग का, उसमें जाकर वहाँ संपर्क कर सकते हैं सर, और उनसे पंजीयन अगर करा लेते हैं तो सर उनको स्वास्थ्य सेवा तो मिलता ही है सर, उसके एक तरह से उनके उनके परिवार वालों को भी एक बहुत बड़ी संबल प्रदान हो जाता है सर इसके माध्यम से।
जो बात मैं पूछना चाह रहा था वो ये कि उससे जुड़ने के लिए क्या करना होगा, किस तरह का आवेदन देना होगा, किस तरह के डॉक्यूमेंट से?
हाँ वही तो सर, इसके लिए एक संगठन बनाना पड़ेगा सर।
संगठन बन गया या संचालक खुद लेकर के आया अपनी फैक्ट्री या दुकान या वर्कशॉप के माध्यम से, जो भी उसका लैब है या वर्कशॉप है उसके माध्यम से वो लेकर के आया कि मैं इसका संचालक हूँ, तो किस तरह का उसको आवेदन देना
होगा? जी सर, आवेदन देना होगा श्रम विभाग के जो कार्यालय होते हैं सर, लगभग हर जिला मुख्यालय में इसकी एक भर्ती है और वहाँ दिया जा सकता है सर। मैं बताना चाहूँगा सर, अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ये लगभग 41 से अधिक जो है सर ये डिस्पेंसरी कार्यरत है सर, और जिसके माध्यम से सर जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है सर, फिलहाल इसको औद्योगिक क्षेत्र के लिए ज्यादातर देखा जाता है सर, कई जगह स्कूलों में भी संचालित है सर, जैसे कोरबा वगैरह है, ऐसे जगह में स्कूलों के कर्मचारी को भी इसकी सुविधा का लाभ जो है दिया जाता है सर, तो ये आप बिल्कुल ले सकते हैं सर। एक विशेष बात मैं और बताना चाहूंगा, क्योंकि श्रम विभाग में काफी लोग जुड़े रहते हैं सर, और इसके माध्यम से उसमें बहुत सारे लोग कार्यरत रहते हैं, तो उनके लिए सर हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल अभी दो जगह जो है लगभग 100 बेड जो हॉस्पिटल जो है कार्यरत है सर, ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से वो 100 बेड की दो कहना चाहिए हॉस्पिटल कार्यरत है, एक कोरबा में है अभी और एक जो है सर रायपुर में कार्यरत है सर। तो कोरबा का जो है सर वो ऐसे समय में हुआ सर, कोरोना काल के समय में उसका उद्घाटन हुआ, तो एक तरह से उसको कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित किया जा रहा था जिस समय उसका उद्घाटन हुआ सर, लगभग 2 सालों से सर।
प्रमोद कुमार साहू जी, आप तफसील से जानकारी तो दे ही रहे हैं, बस एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूँ या जो छूट गई उसे पूरा करना चाहता हूँ तमाम सुनने वालों के लिए, कि उस नियोक्ता कर्मचारी संगठन ने आपको एक आवेदन तो दिया कि इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, मैं और साफ ये समझना चाहता हूँ कि उसके साथ साथ कौन कौन से और डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या नियुक्ति पत्र, कर्मचारियों की पे स्लिप, उनका आधार कार्ड, किस तरह के डॉक्यूमेंट उस नियोक्त संचालक के मतलब प्रतिष्ठान के और व्यक्तियों के क्या क्या देना होता है
सर? इसमें विशेष रूप से सर यदि स्कूल वगैरह में कार्यरत रहते हैं सर, तो उनकी जो शैक्षणिक योग्यताएं होती है उसके अंतर्गत तो उनको जो भी जानकारी संचालक मांगते हैं सर, चाहे उसके शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी हुई हो या उसमें बीएड वगैरह अगर मान लो पढ़ाते हैं सर, तो ये अनिवार्य होता है, तो वो एक तरह से एक फाइल तैयार कर सकते हैं सर जो उनसे संबंधित, और आधार तो अनिवार्य नहीं है रहने के लिए, लेकिन उसके माध्यम से उसकी एक अलग पहचान ही होती है सर, ये अमुक जगह से है।
एक बात और माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूँ, कि जैसे क्योंकि नियोक्ता ये लिख करके तो देगा ना कि हाँ इस व्यक्ति को इतनी तनख्वाह हम देते हैं, तभी तो वो 0.75% का जो कंट्रीब्यूशन है वो तय हो पाएगा। वही कहना चाह रहा हूँ, तो वो पे स्लिप या कितनी तनख्वाह उसे देता है उस संदर्भ का कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा?
हाँ सर, उनको तो सर इस पर एक प्रस्तुत करना ही पड़ेगा सर, जिसमें उनका पे स्लिप महत्वपूर्ण होता है, और या उसके उसके साथ ही साथ यदि वो जो नियोक्ता होता है सर वो उनको जितनी वेतन देती है उसका उसकी एक जानकारी उसको नियमित रूप से संचालक जो होता है श्रम विभाग का जो विभाग का जो ऑफिस होती है सर वहाँ तक उनको देना ही पड़ेगा सर, ताकि उसके 0.75% का जो योगदान है सर वो उनसे लिया जा सके सर। और इसके एवज में सर, क्योंकि रोजगार प्रदाता वो खुद रहता है सर, तो उसको तो उसकी तरफ से तो 3.25% जो % का जो योगदान रहता है सर उसको देना ही पड़ेगा सर। जी सर, ये अनिवार्य है सर, वेतन स्लिप वगैरह जो होना साथ में अनिवार्य है सर, इसकी सर जो प्रदाता रहता है वो कर लेता है।
इस संदर्भ का आखिरी सवाल कि कई बार जो संगठन है समूह है वो बहुत छोटी छोटी तनख्वाह में लोगों को रखे हुए होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि 21,000 मासिक
कम होना चाहिए
से कम होना चाहिए, लेकिन कितने से और कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो श्रम विभाग के नियम होते हैं कि मिनिमम वेजेस इतनी तो व्यक्ति को मिलनी चाहिए, कई बार जो नियोक्ता है या सर्विस प्रदाता है या संचालक है वो इस बात से भी डरते हैं कि फिर हम उस झमेले में पड़ जाएंगे कि हाँ हम मिनिमम वेजेस कितना देते हैं क्या देते हैं, कोई 5,000 का कर्मचारी होता है, कोई 7,000 का, कोई 20 का, कोई 15 का, इस तरह से अलग अलग होते हैं, तो नियमों के तहत वो कौन सा आंकड़ा है कि कम से कम उसका वेतन उतना तो होना ही चाहिए?
सर जो नियम जो होते हैं सर, श्रम विभाग जो है अपने मतलब जितने भी कर्मचारी रहते हैं सर उन लोगों के लिए जो वो लागू करते हैं सर, तो वो तो है ही, लेकिन इसमें न्यूनतम की कोई विशेष ये नहीं है सर, इसको मान लो 1,000 पा रहा है तो क्या ये भाग नहीं दे सकता क्या सर, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस अधिकतम जो है उसका 21,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए सर, ये अनिवार्य है।
जी,
वो इसको पार कर जाता है सर, तो उस तरह से वो इसके क्राइटेरिया है सर, उससे वो
इस योजना से बाहर। एक और सवाल निकल के आ गया, यदि किसी का 21,000 की तनख्वाह है और लगातार 2-3 साल से योजना में शामिल है और अचानक एक दिन किसी महीने से उसकी तनख्वाह 25,000 हो जाती है, तो जो तीन चार पिछले साल का जो उसका कंट्रीब्यूशन है उसका रिएम्बर्समेंट या उसका लाभ उसको किस तरह से मिल सकता है?
हाँ सर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। मैं बताना चाहूंगा सर, इसमें क्या होता है, जब अगर किसी जो कर्मचारी होता है जिसका 21,000 से ऊपर यदि पेमेंट हो जाता है तो वो ऑलरेडी सर ये एसी जो होता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का जो वेबसाइट होता है सर, इसमें नियमित रूप से इसको अपडेट किया जाता है। तो जैसे उसका ये 21,000 से ऊपर हो जाता है सर, तो वो एक तरह से क्लोज हो जाता है, उसका कंट्रीब्यूशन वो न तो ले सकते हैं ना करदाता जो है दे सकते हैं सर, तो उसको इस योजना से बाहर किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब चूंकि उनका पहले से कटा हुआ रहता है जो राशि वगैरह होता है उसके तहत सर वो कम से कम 4 से 6 महीने तक, 4 महीने तक अनिवार्य रूप से सर वो ले सकता है इसके लाभ। तो इसके अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यदि वो नियमित रूप से कर्मचारी है, उनका उपस्थिति जो है बहुत बढ़िया है, या ये कहना चाहिए कि 76 दिन से जो है अधिक होता है सर, उसको इसके अंतर्गत लागू किया जाता है, इसमें जो है उसको लाभ दिया जाता है। तो जिसके तहत जो है इनको सामान्य डिस्पेंसरी में तो वो अपनी दवाइयाँ ले सकती हैं सर, यदि उसको सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल वगैरह होती है, जो चूंकि अभी छत्तीसगढ़ राज्य में मैं बताया सर दो है कार्यरत है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से जो है हैंड ओवर नहीं हुआ है सर, तो इसलिए यहाँ जो है प्राइवेट जो जो डिस्पेंसरी वगैरह है, जो हॉस्पिटल वगैरह है उससे टाइप रहता है, और वो जो है उसके लाभ जो है उनके उनके परिवार के लोग जो 18 साल से नीचे उन पर डिपेंड रहते हैं सर, जो आश्रित रहते हैं, वो बकायदा 4 महीने तक सर बिल्कुल रूप से ले सकते हैं, चाहे उसके कंट्रीब्यूशन बंद ही क्यों ना हो गया हो।
जी जी, बहुत जरूरी जानकारी आपने इस कार्यक्रम में जोड़ी है, और वो उन तमाम लोगों को हम कहना चाहेंगे जो संगठन के स्वरूप में कहीं काम कर रहे हैं या स्वयं नियोक्ता है, इस ओर देखा और सोचा जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्यगत सुरक्षा का मामला है और बहुत जरूरी है, और ये आपदा कई आपदा अचानक आ पड़ती है जिसमें इस तरह की आर्थिक मदद या स्वास्थ्यगत मदद की जरूरत पड़ती है। फिलहाल इस बातचीत को अभी छोटा सा विराम देते हैं और प्रमोद कुमार साहू जी के पसंदीदा गीत की ओर चलते हैं। बताइए साहू जी, कौन सा गीत सुनवाए?
सर मैं चाहूंगा सर SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज में एक गीत है सर, जीवन धारा फिल्म से, इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा। सर ये गीत प्रेरणादायक के रूप में मुझे सुनाइए सर, हमारे साथ सभी श्रोता साथियों।
चलिए, जीवन से जुड़ा ये गीत आप तक पहुंच रहा है।
इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा। हम पानी के कतरे, हम पानी के कतरे, गहरा सागर ये जग सारा, इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा। कभी जो आशा बनती है वही निराशा बनती है, कभी जो आशा बनती है वही निराशा बनती है, आशा और निराशा का बस झूठा खेल सारा, बस झूठा खेल सारा, किसका नाम है जीवन सारा, किसका कोई नहीं किनारा, किसका कोई नहीं किनारा।
जिस तरह जीवन की धारा बह रही है उसी तरह अर्पा की भी धारा बह रही है, अर्पा कम्युनिटी रेडियो की, अर्पा वेब रेडियो की धारा अपनी फ्रिक्वेंसी के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है, आपके जेब तक पहुंचती है, आपके हाथ में पकड़े मोबाइल तक पहुंचती है, और आप उसे सुनते हैं, हमें सराहते हैं, उसका बहुत बहुत आभार। सप्ताह के श्रोता में हमारी बातचीत जारी है, प्रमोद कुमार साहू बोरसरा मेला से है जांजगीर जिले के। साहू जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक रेडियो व्यक्ति के जीवन में किस तरह का बदलाव ला सकता है, क्या एड ऑन करता है, क्या जोड़ता है?
जी सर, रेडियो सर एक ऐसा माध्यम होता है सर, को हम अपने काम करते करते जो है हम सुन सकते हैं सर। और रेडियो में तो हर तरह की जानकारियां देती ही रहती है सर, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ी हुई हो या स्वास्थ्यगत जो जानकारियां होती है, ये महत्वपूर्ण जानकारियां देती ही है। साथ ही साथ जो है सर, ये हमें गीत संगीत से भी हमारा जो है मन तरोताजा करता है सर। मैं बताना चाहूंगा सर, बहुत अच्छा लगता है सर जब किसी ठेले, किसी पान की दुकान, किसी ऐसे जगह सर जहाँ चार लोग आते जाते रहते हैं सर, और वहाँ जो रेडियो जब चलता है सर, ये लोगों को जोड़ने का ही काम करता है सर, एक पुल का तरह का काम करता है। और मेरे लिए तो सर बहुत महत्वपूर्ण रहा है रेडियो।
जी सर, जी। और रेडियो के साथ आप रेडियो के श्रोता है, रेडियो से लगाव है आपका, आपसे प्रेम करते हैं। साथ ही आपने एक बात जो कही थी कि पर्यावरण और सामाजिक कामों में आप जुड़े रहते हैं और पूरे गांव को एक तरह से जोड़ते हैं, तो इस मॉड्यूल को समझने, देखने, यदि हमारे सुनने वालों में से कोई भी आना चाहता है या वो अपने गांव में लागू करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या समझ अभी देना चाहेंगे, कैसे शुरू करें इस प्रकल्प को, और दूसरा यदि वो आपसे मदद चाहे तो किस तरह से करेंगे?
हाँ सर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने। क्योंकि सर ऐसे कार्य के लिए सर संगठन से होना बहुत जरूरी होती है, तो खासकर यदि हमारे जितने भी जो गांव में रहते हैं, चाहे वो शहर में भी रहते हैं, वो भी कर सकते हैं। वो एक संगठन का पहले निर्माण करे सर, और उस संगठन में निर्माण करने के बाद सर, चूंकि शासन की तरफ से भी आजकल सहायता देती जाती है सर, जैसे कि मान लीजिए सर जुलाई का समय होता है सर, उस समय अभी छत्तीसगढ़ शासन का एक हरियर योजना करता है सर, मैं पर्यावरण के लिए बताना चाहूंगा। तो उसके माध्यम से यदि आपने संगठन बना लिया है, उसका पंजीयन कर लिया है, क्या एक तरह से एक मजबूती प्रदान करता है सर। और किसी भी कार्य करने के लिए पैसे ही महत्वपूर्ण नहीं है सर, कहने का मतलब लोगों का बढ़ चढ़ कर भाग लेना सबसे महत्वपूर्ण होता है सर। और अपना गांव कौन नहीं चाहेगा सर कि मेरा गांव जो है स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, लोग हमारे गांव की तारीफ करें। तो निश्चित तौर पर सर इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है संगठन का होना सर। एक संगठन बना लीजिएगा तो आपको ऐसे कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते सर।
जी जी हाँ, हमारी समझ ये बन पड़ी है कि एक संगठन हो, उसका अपना एक ढांचा हो और उसकी गतिविधियों के कोई नियम कानून उस संगठन के बीच तय किए जाएं, साथ ही पूरा आर्थिक हिसाब किताब को रखने वाला एक बेहतर व्यक्ति हो और संगठन के बीच पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वो काम जारी रहे, है ना। एक बात और जो पीछे आपने कही कि एक रुपए प्रतिदिन वाली, वो मेरे दिमाग में चिपक गई तो मैं ये समझना चाहूंगा कि जैसे गांव के लोग और गांव के जो गांव छोड़ करके किसी कामकाज की वजह से बाहर हैं, उन तमाम लोगों का मिला करके मतलब एक रुपए रोज और 365 रुपए सालाना, ये जो एक साल का स्ट्रक्चर है, वो यदि जितने लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं वो लगभग लगभग कितना पहुंच जाता है, मतलब एक साल का ये कंट्रीब्यूशन कितना होता है?
देखिए सर, ये जो है शुरुआती दौर पे तो ऐसा नहीं था। अब चूंकि सर मैं मेरा गांव से उचित लगाव रहता है, मैं हालांकि कार्यरत गांव से बाहर हूँ, और जब भी मैं गांव आता हूँ सर, तो ऐसा महसूस मुझे खुद होता था कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए, ऐसा कुछ कार्य किया जाए जो जिससे जो है गांव के प्रति जो है लोगों को जो दूर होते हैं सर, वो थोड़ा सा लगाव लगा रहे सर। तो चूंकि सर इसमें हम लोग गांव के बहुत लोग तो हैं जो अपने स्थानीय रूप से बैठा के करते हैं, सब करते हैं सर, हम भी उससे शामिल होते हैं, लेकिन हम नियमित रूप से नहीं हो पाते थे। तो हम लोगों ने एक ऐसा किया कि क्यों ना जो गांव से बाहर रहते हैं, जो मतलब नौकरी पेशा लोग हैं, हालांकि उनका गांव तो आना होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आना, लेकिन यदि वो निस्वार्थ भाव से यदि सेवा करना चाहे सर, तो देखिए सर इसमें ऐसा है, एक रुपए वाली ही बात नहीं है, एक रुपए को तो अनिवार्य इसलिए किया गया है ताकि लोग जो है जो बाहर है, जो यहाँ के लोग हैं, जो बाकी समय जैसे नहीं दे पाते हैं सर, तो वो एक रुपए की दर से यदि वो 365 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन करेगा सर, तो उनको भी भार भी नहीं लगेगा ज्यादा, था कि अरे मैंने ज्यादा दे दिया, उनसे प्रश्न ऐसा भी आया कि चलिए मैंने अपने गांव के जो सामाजिक जो कार्य हो रहे हैं चाहे पर्यावरण के लिए लेकर हो चाहे और जो कुछ, तो ऐसे कार्यक्रमों में मैं खुद मतलब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा हूँ करके ऐसा रहेगा सर। एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा सर, चूंकि इसमें हम लोग काफी लोग हैं सर, लगभग 200 से ज्यादा अभी नियमित रूप से हैं सर इसमें, 200 से ज्यादा युवा अभी इसे भाग ले रहे हैं। तो इसमें सर क्या होता है सर, एक यादगार जैसे बनाना होता है ना सर, आज इनका जन्म दिवस है या इनके इनके पिताजी के याद में यदि ऐसा कुछ किया जाए, तो सर उसका भी एक हम लोग ने रखा है कि यदि आप नहीं आ पाते कोई बात नहीं, आप अपना जन्म दिवस जो है हम बड़े उत्साह के साथ अपने जो एक सोशल मीडिया का जो ग्रुप बना होता है उसके माध्यम से हम लोग बताते हैं, पता चलता है, तो वो सर खुद उसमें मतलब ऐसा लगता है कि क्यों ना भाई मैं अपने जन्म दिवस पर एक पौधा लगाऊं या एक पौधा के लिए जो कुछ कुछ राशियां दूं, तो वो अपने तरफ से जितना भी हो 500 एक रुपए से लेकर आप 2000 जितना भी देना चाहते हैं सर, उनके स्वैच्छिक रहता है वो, इसमें अनिवार्यता नहीं रहती है, वो करते हैं सर। तो एक तरह से समिति जो हम लोगों का युवा संगठन है सर उसको एक मजबूती प्रदान तो होती ही है सर, साथ ही साथ सर उनका उनके जो है लगाव जो है सर बड़ा रहता है, आके जब देखता है सर तो बहुत अच्छा उनको सुकून महसूस होता है सर, अपने गाँव को हरा भरा आज भी आप देखिएगा सर कि जो पौधे छोटे से पौधे के रूप में थे आज अच्छे खासे बड़े बड़े पेड़ पौधे के रूप में जो है हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर तो हमारे आपके जरिए तो लोगों को भी अपनी तरफ से एक तरह से आकर्षित करते हैं सर, तो इसलिए जो है कंट्रीब्यूशन करते हैं। कंट्रीब्यूशन में कई तरह के हमारी जरूरतें भी होती है सर, जैसे आप पौधे लगा दिए हैं मान लीजिए तो उसके देख रेख के लिए उसको तैयार की आवश्यकता होती है, तो हम उसके माध्यम से उसको करते हैं, और अच्छा होता है सर यदि किसी के घर के सामने यदि लगवा रहे हैं तो वो तो अपना देख रेख करेगा ही, समिति भी अपने स्तर पे करते ही है सर, पर इसमें क्योंकि एक पर्यावरण का संदेश देता हुआ ये पेड़ पौधे लगाना होता है सर, तो इसी तरह से लोग भी पानी डालना उसके देख रेख करना वो बाहरी लोगों का भी अपना तरह से काम हो जाता है, समिति के लोग तो नियमित रूप से करते ही है।
आपका जो बोरसरा गाँव है वो लगभग कितने मकानों का है या कितनी जनसंख्या का है?
लगभग सर हमारे गांव जो है लगभग सर 8000 की जनसंख्या है सर, और अपना एक स्वतंत्र जो है सर ग्राम पंचायत है, लगभग 20 वार्ड में बसा हुआ अपना एक गांव है, और इसमें जनप्रतिनिधि भी सहयोग करते हैं सर निश्चित तौर पे, यदि उस पर वो तो उनको जानकारी होती ही है ये करते ही है सर।
प्रमोद जी आपकी तमाम बातों से मैं एक आंकड़ा निकाल पाया इस तरह का कि 8000 की जनसंख्या का आपका गाँव है लगभग लगभग 20 वार्डों में समाहित है और बोरसरा उसका नाम है, उसमें जो आपकी युवा समिति है जो समिति है उसके माध्यम से लगभग लगभग 200 लोग एक रुपया प्रतिदिन का कंट्रीब्यूशन देते हैं, यानी कि 365 रुपया सालाना, यही यदि लगभग जोड़ लिया जाए तो कोई कभी दे पाया कोई नहीं दे पाया किसी ने ज्यादा दे दिया, सबको यदि मोटा मोटी देखा जाए तो मेरा जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 70 से 75 हजार का एक बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा है। वाकई ये सुनने वालों के लिए ये मैंने कैलकुलेशन किया है कि जो तमाम अरबा रेडियो के माध्यम से लोग इस कार्यक्रम को इस समय सुन रहे हैं कि एक छोटी सी समिति एक सिर्फ 8000 में से 200 लोगों का समूह यदि जुड़ जाए तो गांव के उन्नयन के लिए 70-75 हजार का एक बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं, गाँव में हरियाली पसर सकती है, उसकी देखरेख हो सकती है और पौधा लगाने के बाद उसकी जो जरूरतें होती है फेंसिंग चीजें से लेकर के पानी देने तक की वो एक बहुत अच्छे से पूरी हो सकती है। ये कहते हैं ना कि स्वशासन का एक मॉड्यूल है जो गांधी जी कहा करते थे कि हमारी ग्राम सभाएं संसद से बड़े महत्व की है और वहीं से ही हमारा लोकतंत्र ऊपर आता है। वाकई एक छोटी सी बात है भले समिति की 200 लोगों की बात है, 8000 में से सिर्फ 200 लोगों की बात है, लेकिन एक बड़े बदलाव की बात है, उसके लिए वाकई बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद कि सामाजिक रूप से आप एक बड़ा काम कर रही हैं। इसी नोट पर इस कार्यक्रम का फिलहाल आखिरी गीत आपकी पसंद का जानना चाहेंगे।
एक गीत है सर पक्षियों के घरों को रविंद्र जैन साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन को परिभाषित करते हुए बताया है सर ये गीत में, और वो कहते हैं सर कि जाते हुए क्यों जीवन दिए जाते हैं सर, ये गीत आप हमें
बहुत सुंदर सुनिए।
Thank you.
रेडियो के झरोके से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा सप्ताह के श्रोता। और बेहतरीन गीत इस कार्यक्रम में अभी हमने सुने प्रमोद कुमार साहू से प्रेरक बातचीत, हम कर पाए, सुन पाए, समझ पाए। और प्रमोद कुमार जी बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए और इतनी प्रेरक बात अर्पा कम्युनिटी रेडियो और वेब रेडियो के तमाम श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए।
जी सर, मैं अर्पा रेडियो का भी आभार पता जताना चाहूंगा सर, और साथ ही साथ सभी श्रोता साथियों को मेरा नमस्कार सर।
जी शुक्रिया। तो यह था कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता जिसे आप सुन रहे थे अर्पा कम्युनिटी रेडियो वेब रेडियो के माध्यम से। ये क्रम यूं ही जारी रहेगा, हर हफ्ते सुनते रहिएगा नई नई आवाजों के साथ। ये कार्यक्रम प्रस्तुत होता है अलग अलग प्रस्तोता अलग अलग श्रोताओं को लेकर के आते हैं, तो हमारा मौका भी फिर कभी आएगा, लेकिन फिलहाल नमस्ते।
अर्पा रेडियो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।